आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं 70वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में नैतिक व अनैतिक रूप से किए व्यापार के परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। आगे, एक शहर में धर्माचार्य पंडित जी रहते थे, नियमित जीवन यापन करते। प्रातः 4:30 बजे उठना, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो व्यायाम के उपरांत गायत्री मंत्रों से हवन करना, चींटियों को, चिड़ियों को, कुत्तों को, गाय को, सबको भोजन करा, नाश्ता करते। कोई यजमान कथा कीर्तन हवन आदि कराता तो कर देते, नहीं तो निरंतर माला से भजन में लीन रहते। बहुत संतोषी ब्राह्मण थे, उनके आचरण की दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। श्राद्ध के दिन चल रहे थे। एक सेठ जी जो FCI से के कई गोदामों से रात्रि में चावल चीनी गेहूँ चोरी करे कर अपने गोदामों में जमा कर समय आने पर अच्छे दामों में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे, यही उनका व्यवसाय था। एक दिन विचार आया कि किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर कुछ पुण्य कार्य भी कर लिया जाए। समय पर आग्रहपूर्वक उक्त ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण भिजवा कर स्वयं अपने हाथों से खाना परोस कर बड़ी श्रद्धा से भोजन करा। पान बीड़ा के उपरांत दक्षिणा व वस्त्र प्रदान किए तथा निवेदन किया कि अभी बाहर बहुत तेज धूप है, यहीं विश्राम कर शाम को चले जाना। सेठ के विशेष आग्रह से पंडित जी विश्राम करके करने को रुक गए। जिस कमरे में पंडित जी रुके थे वहीं पलंग के गद्दे के नीचे 10 लाख के 100-100 की गड्डियाँ बिछा कर रखी हुई थी। लक्ष्मी को देखकर पंडित जी को लोभ आ गया और एक गड्डी अपने बैग में डाल ली। सोचा सैकड़ों गड्डियों में से क्या मालूम पड़ेगा। शाम को चाय पीकर सेठ को आशीर्वाद दे ब्राह्मण घर को रवाना हो गए। दूसरे दिन सेठ को FCI गोदाम वालों का हिसाब करना था, अतः नोट गिनते समय एक गड्डी कम होने के कारण विचार आया कि जरूर हाउस कीपर ने सफाई करते वक्त एक गट्टी बार की होगी, अतः बुलाकर धमकाने और पिटाई करने लगे। इधर ब्राह्मण देवता प्रातः नियमित दिनचर्या के उपरांत जब अपनी सीट पर बैठे ही थे तो उन्हें कल वाली घटना का स्मरण हुआ और अपने कृत्य पर बड़ी ग्लानि हुई। तुरंत नोट की गड्डी को लेकर सेठ के घर वापस करने के उद्देश्य पहुँचे। उधर सेठ हाउसकीपर के अलावा अन्य नौकरों पर भी दूसरा रूप बढ़कर नाराज हो रहे थे कि ब्राह्मण देवता सेठ के पास जाकर बोले, ये सब निर्दोष हैं, नोटों की एक गड्डी मैं ही ले गया था। लेकिन सेठ जी को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। बोले, आप जरूर इन लोगों को बचाने का दोष अपने ऊपर ले रहे होंगे। प्रत्युत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि कल जो भोजन कराया था उसकी सामग्री कहाँ से मंगाई थी आपने। तब सेठ ने धीरे से ब्यौरे पर बदलाया कि मैं तो गुप्त रूप से FCI का गोदाम से चोरी किया हुआ चीनी चावल गेहूँ खरीदता हूँ, अपने गोदामों भरता हूँ, यही मेरा व्यापार है, उसी सामग्री से आप भोजन कराया था। ब्राह्मण ने कहा कि दोषपूर्ण अन्न ग्रहण करने के उपरांत मेरी बुद्धि अनियंत्रित होकर आपका धन चुराने को उद्यत हुई। प्रातः नित्य कर्म के उपरांत शुद्धवत होने पर होश आते ही आपके पास दौड़ा चला आया, चोरी से लेकर गए नोटों की गड्डी सेठ को सौंपते हुए क्षमा मांगी। सेठ ने बताया कि कई वर्षों से व्यापार में लगातार घाटा होने से किसी व्यापारी ने मुझे इस तरह व्यापार करने का सुझाव दिया जिससे मैं सचमुच बहुत धनी होता चला गया। ब्राह्मण ने बताया कि अनेक तरीके से कमाए हुए धन यद्यपि वर्तमान में तो बहुत सुख देता है, महसूस भी होता है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम असहनीय होते हैं। आपका पूरा परिवार अनियंत्रित होकर गलत मार्ग पर जाकर डूबता चला जाएगा। सुखी होना है तो एक उपाय बतलाता हूँ। अब तक के किए सारे कर्म संकल्प पूर्वक भगवान को अर्पित करते हुए शांत मन से शुद्ध बुद्ध व्यापार करो और रोजाना क्रय विक्रय रजिस्टर में चढ़ा बंगले में बने मंदिर में मुनिम जी द्वारा आरती के उपरांत रात्रि को भगवान के सामने रखें और स्वयं भगवान के सेवक बन व्यापार संभालें। मुनीन जी, जो भी हिस्सा हिसाब किताब का रजिस्टर है सब भगवान को नियमित सौंपें, आपको नहीं। और प्रातः आरती के वक्त भगवान को प्रणाम कर बोलें, हे परमपिता, तुम ही सुध ले रहे जन जन की, कुछ कहने से पहले ही सब जानते हो मन की। और काम पर जाने का आदेश लेकर आप सहित सभी स्टाफ काम पर लग जावें। रोजाना आय व्यय का ब्यौरा केवल भगवान को लिखित सौंपें और दूसरे दिन आरती उपरांत रजिस्टर ले आय का कार्य निमित्त लिखें। यही दिनचर्या रहेगी। अपने अभिमान को दूर करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करें। उतनी ही इच्छाएं रखें जो पूरी हो सकती हों, जो पूरी नहीं हो सकती उन्हें छोड़ दें। सेठ जी ने ब्राह्मण देवता की आदेशानुसार चोरी वाला व्यापार तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया और सारा व्यापार रजिस्टर भगवान को भेंट कर उन्हें ही अपना मालिक मान अपनी तनख्वाह भी निर्धारित कर सेवक के रूप में पूरे स्टाफ सहित कार्य करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 20 वर्ष उपरांत सेठ जी के पुत्र ने उन्हीं ब्राह्मण को श्राद्ध में न्योता देकर बुलाया। घर का वातावरण देख ब्राह्मण अद्भुत हो गए। सेठ के पुत्र ने बताया कि आपके बतलाए सुझाव पर संकल्प सहित अमल करने का नतीजा यह हुआ कि व्यापार में आज तक घाटा हुआ ही नहीं, बल्कि इतना मुनाफा हो रहा है कि नित्य गरीब लोगों को दोनों समय भोजन उच्च क्वालिटी का भगवान के नाम पर लगातार लंगर के रूप में चल रहा है और पूरा परिवार पूर्ण शांति के साथ स्वच्छ वातावरण में बिना किसी तनाव के जीवन यापन कर रहा है। सभी संस्कारी बच्चों से क्या प्राप्त कर रहे हैं? अतिरिक्त खर्चों के लिए थोड़ी सी रकम भी लोन चाहिए तो प्रार्थना पत्र लिखकर भगवान के चरणों पर पूरे दिन रखने के बाद दूसरे दिन चेक द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें चुकाने की तिथि भी निर्धारित रहती है। पूरा परिवार भगवान के सेवक के रूप में ही निश्चिंत होकर व्यापार संभालते हैं। आपके बतलाए हुए नियम का पालन करते हुए, आपका भी आभार मानते हुए नित्य आपको भी याद कर लेते हैं। धन्य हैं आप जो परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट देकर फॉलो करें। धन्यवाद।